श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 अध्याय 18 श्लोक संख्या 25 वक्ता इज ग्रेस तत्वता प्रभु डेट 14/2/2015
शब्दार्थ अविष्यम दुर्दम मन्यमाना विचार करते हुए कृष्णम कृष्ण को दानव पुंगव वह अग्रण्य असुर वाहन ले जाते हुए द्रुततरम तेजी से प्रागात चलने लगा अवरोहणात परम उतारने के लिए निश्चित स्थान से आगे। अनुवाद भगवान कृष्ण को दुर्दम सोच कर वह अग्रण्य असुर प्रलंब बलराम को तेजी से उस स्थान से बहुत आगे ले गया जहाँ उतरना निश्चित किया गया था। तात्पर्य प्रलंब बलराम को भगवान कृष्ण की नज़र से दूर ले जाना चाहता था जिससे वह उन पर वार कर सके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् अदा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत मदेव मे विशतो मानसराजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते आनंदलीलामय विग्रहाय हेमं मदिव्य सविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते जय श्री राधा गिरधर भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की अविषयम् मन्यमान कृष्णम दानव पुंगव वहन दूतरम प्रागात अवरोहणात परम कई दिनों से हम इस दसम स्कंद का श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान की मधुर बाल लीला सखाओं के साथ जो गौचारण और जो आनंद के साथ कई लीलाएँ करते हैं उनका श्रवण करते हम करते आ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी विस्तार से उनका वर्णन करते जा रहे हैं। तो हमने अगले श्लोकों में सुना भगवान कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ गौसारण करने के लिए पांडेरवन में पधारे हैं, जहाँ अभी ये लीला चल रहा है उस स्थान का नाम है पांडेरवन। अगले श्लोक में श्रवण करते आ रहे हैं। तो इस पांडेरवन में भगवान कृष्ण और बलराम का दो ग्रुप हो गया, दो दल हो गया। दो दल होने के कारण एक दल में बलराम जी और एक दल में कृष्ण थे और उसी अवसर पर देखते हुए श्री प्रलम्बासुर वहाँ आया एक गोप सखा का रूप लेकर और उसने देखा कि एक दो ग्रुप है, एक बलराम जी का है और एक कृष्ण का है, तो किस ग्रुप में शामिल होना है, किस ग्रुप में उनको खेलना है वो सोच रहे थे। तो उसने सोचा कि ये कृष्ण है, बहुत से हमारे नाती यानी कि असुर को मार चुके हैं बचपन से ही, पुतना अघासुर बकासुर आदि कई असुरों को मार चुके, तो उनको जीत पाना असह्य है। जो अभी इसी श्लोक में प्रथम श्लोक आया, प्रथम शब्द आया है अविषय, अविषयम का मतलब है अजय, उनको जीतना कठिन है, दुर्दम। तो भगवान कृष्ण को जीत पाना कठिन है, इसलिए उसने प्रलंबासुर ने सोचा कि मैं बलराम के ग्रुप में शामिल होता हूँ। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि बलराम भी उतनी शक्ति वाला है, जब भगवान कृष्ण उनसे अलग नहीं है शक्ति में। तो उस सोच कर श्री बलराम जी के ग्रुप में वो शामिल हुए, और दोनों ग्रुप का खेल शुरू, और शर्त यही था कि जो ग्रुप हार जाएगा तो जीतने वाले जो ग्रुप है उनको कंधे पर बिठाकर कुछ स्थान, कुछ दूरी पर स्थान तय किया था, वहाँ तक उनको कंधे पर बिठाकर ले जाना है, फिर वहाँ से वापस लाना है। तो हुआ यूं ही कि कृष्ण का ग्रुप हार गया और बलराम के ग्रुप में प्रलंबासुर थे, और कृष्ण के ग्रुप में कृष्ण और श्रीदाम सखा दे। तो कृष्ण का ग्रुप हार गया, उनका दल हार गया, तभी कंधे पर बैठाना पड़ेगा। तो कल जो हम श्रवण किया कल के श्लोक में, श्रीदाम सखा थे कृष्ण के ग्रुप में और बलराम और प्रलंबासुर। प्रलंबासुर का टर्न आया कृष्ण के ग्रुप से, तो उसने बलराम को कंधे पर उठा लिया और कृष्ण ने श्रीदाम सखा को, तो दोनों साथ में चल रहे थे। तो आज के श्लोक में जो है अविषय मानम, वो महत्वपूर्ण शब्द है, जीव गोस्वामी उसी पर टिका देते हैं कि जो अजय है, जिनको जीत पाना कठिन है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। तो ये वो बात वो समझकर उस ग्रुप में शामिल नहीं हुए। और प्रलंबासुर माना जाता है, श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि अहंकार का प्रतीक है प्रलंबासुर। बलराम जी ने दो असुरों का वध किया है, एक धेनुकासुर और एक ये प्रलंबासुर। जो धेनुकासुर था वो काम का प्रतीक था, और ये प्रलंबासुर है वो अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जीव को अपनी जो स्थिति है उनसे दूर करता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का वास्तव में स्वरूप है भगवान का दास होना, लेकिन जब उसमें अहंकार आता है तो अपने आप को मालिक समझने लगता है। वही मालिक भाव प्राप्त करके वो कृष्ण से दूर ले जाता है। तो दूर अहंकार के कारण ही जीव कृष्ण भगवान के से दूर होता है, इसलिए वास्तव में अहंकार को तोड़ने वाला है तो वह है गुरु। गुरु के बिना अहंकार टूटता नहीं, कोई कितना भी प्रयास करे, लेकिन जब तक गुरु का शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो अहंकार से मुक्त नहीं होगा पूर्ण रूप से। जैसे तेने महाप्रभु ने कहा है, तृणादेपी सुनी चैन तरवी सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तन या सदा हरी। वो स्थिति प्राप्त करने के लिए जब तक कोई जीव गुरु का शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो अहंकार से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए बलराम जी यहाँ प्रलंबासुर का वध करते हैं। और अहंकारी जीव को वास्तव में दुर्गति में डालने वाला होता है, चाहे कोई भी स्थिति में हो व्यक्ति, या भौतिक स्थिति में या आध्यात्मिक स्थिति में हो, लेकिन अहंकार व्यक्ति को नाश करवा देता है। प्राय देखा जाता है और कई प्रसंगों में भी हम सुनते हैं। और अहंकार कैसे आता है, कुंती महारानी कहते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर, उस कुल में जन्म होने से अहंकार जीव को आता है, या वेद अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने के बाद अहंकार आता है, या सुंदर रूप किसी व्यक्ति को मिल गया तो उनको अहंकार आता है, या धन से भी प्राय ज़्यादा देखा जाता है धन से अहंकार आता है, और धन से अहंकार आने के कारण व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपना परिचय भूल जाता है और कई लोगों का अपमान करने लगता है, और यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं मानता और उनका भी अपमान करने लगता है। हम सुनते हैं प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि कहीं कहीं वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं कि भगवान को उड़ा दो, भगवान को उड़ा दो, भगवान की क्या उड़ाएगा। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि नेपोलियन था जो गार्डन में घूम रहे थे, प्रभुपाद इसी नेपोलियन में उनका देखा नेपोलियन का टिश्यू और कहा कि ये नेपोलियन कहाँ गया। जो जिंदा थे तब मानते थे सब, लेकिन आज नहीं है तो कहाँ गया। और ये जो पृथ्वी है भगवान के बनाया हुआ, ये गार्डन है, वो सब ऐसे ही है, लेकिन नेपोलियन चला गया और उनका जवाब कोई नहीं दे पाया। तो ये अहंकार के कारण व्यक्ति भगवान को भी उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा भी अहंकार किसी में हो तो व्यक्ति भगवान को भी भूल जाता है। द्वारका लीला में हम देखते हैं कि सत्राजित जो सूर्य की आराधना करके वो समयंत मणि प्राप्त किए थे, भगवान ने कहा ये तुम दे दो राजकोष में, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हित का कारण हितकारी नहीं है समयंत मणि। लेकिन वो अहंकार के कारण उसने जो प्राप्त किया था मणि तो मना किए सत्राजित, कि मुझे ये सूर्य देव ने दिया है। वास्तव में यह मणि भगवान कृष्ण का ही था। ब्रजमंडल में श्री राधारमण महाराज बताते थे एक बार कथा में कि जो समयंतक मणि था वो वास्तव में श्याम सुंदर ने श्री राधा जी को दिया था, और राधा रानी जब पानी भरने के लिए यमुना में गई तो मणि वहाँ गिर गए यमुना जी में, तो वो मणि यमुना जी ने प्राप्त कर लिया। तो ये वो मणि प्राप्त करके यमुना जी ने उस मणि को अपने पिता जो सूर्यदेव है उनको दिया था, तो उस सूर्यदेव ने जो सत्राजित ने आराधना किया था सूर्यदेव की, तो उनसे प्रसन्न होकर वो मणि सूर्यदेव ने सत्राजित को दिया था। इसलिए भगवान ने कहा कि यह मणि तुम्हारे लिए हितकारक नहीं है, तुम इस राजकोष में जमा कर दो। लेकिन अहंकार के कारण सत्राजित ने वो भगवान की बात नहीं माना, और हम सुनते हैं कितना भी उस मणि के कारण अनिष्ट हुआ। विस्तार से प्रसंग है द्वारका लीला में, तो उस मणि नहीं दिया सत्राजित ने और अपने घर पे चला गया सत्राजित। तो हुआ यूं, एक दिन उनका भाई था प्रसन्नजीत, तो सत्राजित ने जहाँ रखा था उस मणि को, तो उस मणि लेकर उनका भाई प्रसन्नजीत था वो शिकार करने के लिए चला गया वो मणि साथ लेकर। मणि साथ लेकर जब प्रसन्नजीत गया शिकार करने के लिए, तो शिकार में उनका शेर के साथ युद्ध हुआ, तो शेर ने उसको मार दिया प्रसन्नजीत को, और मणि वहाँ छूट गया। तो वहाँ उसी स्थान पर जामवान आते हैं, और जामवान और वो शेर के साथ युद्ध होता है, तो शेर को जामवान मार देते हैं और मणि लेकर जामवान वहाँ से चला जाता है। तो मणि लेकर जामवान चला जाता है। फिर इधर द्वारका में होता है कानाफूसी होने लगता है सभी द्वारकावासी, कि जो वहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि दो बार ऐसा घटना हुआ है द्वारका में कि भगवान पर उन भगवान के पार्षद जो द्वारकावासी थे उनको भी शंका आ गया थोड़ा, कि द्वारकावासी कानाफूसी करने लगे कि ये मणि जो कृष्ण ने मांगा था और नहीं दिया सत्राजित ने, तो लगता है उसने सुरा लिया, क्योंकि बचपन में माखन चोरी करते थे, तभी चोरी करने का उनका आदत, यानी शायद उसने ही यह समझन तक मणि चुरा लिया। सब द्वारकावासियों ने एक दूसरे को कान में बातें करने लगे, और थोड़ा थोड़ा शंका भी होने लगा भगवान के प्रति, उनके पार्षद होते हुए भी। तो भगवान को भी पता चला कि ऐसा द्वारका में सबका मन मेरी तरह से थोड़ा उद्विग्न होने लगा है। तो भगवान ने सोचा कि मणि को मुझे वापस लाना होगा। तो भगवान गए उस मणि को ढूंढने के लिए। तो जहाँ जहाँ वो प्रसन्नजीत गए थे उस रास्ते पर गए तो देखा शेर मरा हुआ है। फिर उसी पदचिन्हों पर आगे चलकर गए तो जामवान के गुफा में वो भगवान प्रवेश किए। तो जामवान के पास मणि था तो जामवान के साथ भी युद्ध हुआ। वहाँ 21 दिन तक युद्ध चला जामवान के साथ। फिर जामवान को पता चला कि एक साक्षात भगवान राम ही है जो इस द्वापर युग में प्रकट हुए हैं। तो उनके शरण में गिरकर प्रार्थना करने लगे और माफी मांगने लगे। फिर अपनी पुत्री जो जाम्बवंती थी उनको उसने भगवान को अर्पण किया और प्रार्थना और शरणों में प्रार्थना करके क्षमा याचना किया और मणि भी दिया। तो भगवान जाम्बवंती के साथ और मणि के साथ वहाँ से आए और प्रसन्न सत्राजीत को मणि दिया कि यह तुम्हारा मणि ये लो, तुम्हारी जो शंका थी मेरे प्रति इसको दूर करो। तो सत्राजीत भी बहुत शर्मिंदे हुए, उनको भी बहुत दुख लगा कि मैं गलती से द्वारकाधीश पर आरोप लगाए। तो उनको भी माफ़ी मांगने लगे और अपनी पुत्री सत्यभामा थी वो भगवान को अर्पण किए, उनके साथ शादी करवाया। और शादी करवाने के बाद वो जो मणि था वो सत्राजीत ने उस मणि को दहेज के रूप में सत्यभामा को दिया और भगवान कृष्ण के पास फिर से वापस आ गए। तो मणि भगवान के पास आए तो भगवान ने लिया नहीं, दिया और वापस दे दिया सत्राजीत को। कहा कि द्वारका में फिर से बातें करने लगेंगे कि कैसे भी करके मणि द्वारकाधीश ने ले लिया, ऐसे नहीं दिया तो ऐसे भी करके किसी भी प्रकार से मणि वापस ले लिया। भगवान ने इतना ही कहा कि मुझे भी नीचे आप रखो। तो प्रसन्न सत्राजीत को चाहिए था मणि, तो एक बार कहने से वो तुरंत ले ली, मना नहीं किए कि मैंने अभी दे दिया है बाकी पास रखो, अभी मैं देश में दिया हूँ कन्या दान दे दिया है इसलिए मुझे वापस चाहिए, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा आप रखो तो ले लिया तुरंत। जब उस मणि ले लिया तब हुआ यूं कि कृत ब्रह्मा सद्धनवा ने अक्रूर जी ये तीनों मिलकर प्लान बनाए कि कृत ब्रह्मा का शादी करना था सत्यभामा से, लेकिन उस द्वारकाधीश के साथ शादी हो गई इसलिए वो सत्राजीत से थोड़ा द्वेष करने लगे थे। तो अक्रूर जी कृतवर्मा और सद्धनवा तीनों मिलकर उसको उस प्लान बनाए वो मणि लेने के लिए। और सद्धनवा और कृतवर्मा गया गए वो सत्राजीत के घर पर और उनको मार दिए सत्राजीत को, मारकर वो मणि लेकर दोनों आ गए सद्धनवा और कृतवर्मा। तो मणि लेकर आए और अक्रूर जी को दिया क्योंकि प्लान था अक्रूर जी का। तो मणि लिया तो वो दोनों तो सोचने लगे भी तो द्वारकाधीश को पता चलेगा तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु है। और अक्रूर जी भी अफसोस करने लगा कि क्या हो गया। तो मणि लेकर भाग गया काशी अक्रूर जी, वो मणि लेकर वहां से चले गया काशी में। और इधर द्वारका में पूरा सरसा होने लगा कि मणि कहाँ गया मणि कहाँ गया और सत्राजीत को किसने मार दिया। तो वहाँ एक बार शंका करते हैं द्वारकावासी कि शायद ये भी कृष्ण का काम होगा मणि लेने के लिए। दो बार द्वारकाधीश में द्वारकावासियों ने भगवान कृष्ण पर शंका किया, पहली बार और यह दूसरी बार। तो फिर भगवान को लगा कि मुझे अगली बार भी उस मणि को वापस लाना पड़ेगा। और वो आयु कि उधर काशी में अक्रूर जी जाकर बड़े बड़े यज्ञ करने लगे और बहुत बड़ा दान देने लगे क्योंकि यह मणि का समयंतन मणि का प्रभाव था ऐसा। रोज 80 किलो सोना उगलता था, एक बार रख दो तो रोज 80 किलो सोना उससे निकलता था। तो इतना सोना निकलने के बाद क्या करेगा व्यक्ति? ऐसे भी अकरु जी के पास था तो दान पुण्य करने लगे बहुत, तो सारे नगर में पता चल गया और द्वारका में भी पता चल गया अक्रूर जी भी काशी में बहुत दान पुण्य कर रहे हैं और यज्ञ भी करते हैं बहुत। तो भगवान कृष्ण वहाँ गए तो वहाँ जाकर अक्रूर जी ने जब दर्शन किया द्वारका जी से, तुरंत वो तो समझ ही गए, तो उनके शरणों में गिर गए अक्रूर जी और प्रार्थना करने लगे, मुझे बहुत गलती हो गई, मेरा मैं ये लेकर आ गया इधर। फिर भगवान को वापस दिया, वापस देकर फिर द्वारका में आए भगवान और सबको बताया द्वारका वासी को ऐसी ऐसी घटना हुई, और फिर बाद में उस उग्रसेन महाराज को मणि दे दिया। तो व्यक्ति का अहित होता है अहंकार के कारण। थोड़ा सा सत्राजीत का जो भगवान ने कहा, भगवान की बात नहीं मानने से कितना सहन करना पड़ा सबको और कितने लोगों का जान भी गया इसमें। पहले से भगवान की बात मानकर अगर सत्राजीत ने दे दिया होता मणि तो कुछ नहीं होता, भगवान के लिए लाभ ही हुआ क्योंकि उस मणि के कारण दो पत्नी प्राप्त हुई, सत्यभामा और जामवंती। लेकिन सत्राजीत के लिए बहुत दुर्घटना हुई और साथ साथ में अक्रूर जी का भी। तो प्रश्न ये होता है कि अक्रूर जी भगवान के महान भक्त, वंदन के आचार्य, तो इसका ऐसे मृत्यु कैसे हो गया? तो वहाँ आचार्य विशेष करके जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले गए अक्रूर जी, तब गोपियों ने उनको कुछ श्राप दिए थे क्योंकि भगवान से उनको विलग किए, अलग किए, इसलिए उसी के कारण अपराध के कारण ब्रजवासी के शरणों में अपराध के कारण कुछ दुर्भावना अक्रूर के मन में प्रकट हुई। तो जो भी हो, कहने का तात्पर्य यही है कि अहंकार, अहंकार के कारण व्यक्ति चाहे आध्यात्मिक मार्ग में हो या भौतिक मार्ग में, अहंकार के कारण व्यक्ति दूसरों का अनिष्ट करते हैं और अपना आप का भी अनिष्ट करते हैं। और विशेषकर जो भक्ति मार्ग में है, आध्यात्मिक मार्ग में है, उनके लिए बहुत हानिकारक है अहंकार। और जब धन आता है और साथ साथ में कोई पोस्ट आता है आध्यात्मिक मार्ग में, पोस्ट के कारण भी बहुत अहंकार बढ़ता है जीव का, भक्त का, जो भी हो। साहब छोटा पोस्ट हो या बड़ा पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, पोस्ट के कारण उनका मन नहीं लगता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्वकालेषु माम अनुस्मरण। सर्वकाल, सर्वकाल मतलब जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्त अवस्था में, तीनों काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्वकाल में माम अनुस्मरण, सर्वकाल में। लेकिन जब अहंकार आता है तो एक ही काल में नहीं स्मरण होता है, जागृत अवस्था में भी नहीं, स्वप्न में और सुषुप्त में तो बात ही छोड़िए। तो जागृत अवस्था में स्मरण ही व्यक्ति को या भगवान को प्राप्त कराने में सबसे बड़ा सहायक स्मरण भक्ति है। स्मरण से ही मन हमारा भगवान के शरणों में लगता है। इसी प्रसंग को चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है कि जब महाप्रभु, अभी जो चैतन्य चरितामृत गौर कथा चल रहा है उसमें भी और कथा चलता है, सुधांशु प्रभु कथा कह रहे हैं भगवान की ब्रज यात्रा, वृंदावन यात्रा, तो उसी अंतर्गत एक छोटा सा प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब भगवान जगन्नाथपुरी से निकलते हैं ब्रज जाने के लिए, वृंदावन दर्शन के लिए, तब नीलाचल से निकल कर जब उस उड़ीसा के बॉर्डर और बंगाल गौड़ देश के बॉर्डर पर जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ उस सुबह का राज्य होता है उस स्थान पर, वो बॉर्डर पर। तो चैतन्य महाप्रभु जो राजा प्रताप रुद्र के सैनिक थे, साथी थे, वो कई लोग उनके साथ चल रहे थे महाप्रभु के साथ। तो वहाँ एक साथ थे उसमें महापात्र करके, तो महाप्रभु को कहा उस महापात्र कि आप 3-4 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सूबा है, ये जो शासन करता मुसलमान है वह बहुत शराबी है, और शराबी होने के कारण वो कुछ भी कर सकता है। पहले जब तक उनके साथ हम बात नहीं कर ले तब तक आप इस सरहद पार मत कीजिए, और हम उनके बात कर कर वो उसकी क्या इच्छा है वो जानकर हम फिर बात कहेंगे आपको, तब आप आगे जाइए। तब चैतन्य महाप्रभु ने उस बात को स्वीकार किया और वहाँ रुक गए उस बॉर्डर पर। तो वहाँ रुके थे, तब उस सुबह ने उसको पता चला कि यहाँ कोई साधु आया है और बहुत लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो एक गुप्तचर को भेजा, तुम देखो वो कौन है, वो साधु कौन है। तो गुप्तचर उस चैतन्य महाप्रभु जहाँ रुके थे कई पार्षदों के साथ, वहाँ दूर से देखा तो भगवान कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ जोर से कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन सुना और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए उस गुप्तचर ने, तो उनका मन में भी भाव प्रकट होने लगा और भगवान को देखकर वो भी कृष्ण कृष्ण करने लगा। वो था मुसलमान गुप्तचर, लेकिन भगवान का चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव देखकर, उनका रूप देखकर, नाम कीर्तन देखकर उनका मन में भी अष्ट सात्विक विकार होने लगा और वो भी कीर्तन करने लगा। और कीर्तन करने के बाद थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर जब कीर्तन बंद हुआ तो वहाँ से वो चले और अपने मालिक जो सुबह थे उस सुबह के पास जाकर वो कहने लगे, निवेदन करने लगे कि वो तो मुझे तो लगता है वो साधु के वेश में है, लेकिन साक्षात पीर दिखता है मुझे, तो भगवान दिखता है, वो साक्षात भगवान दिखता है। और उनका रूप, उनका गुण और साथ साथ में उनके साथ जो पार्षद थे उनका तो बात ही कहना है, सब कीर्तन कर रहे थे कृष्ण कृष्ण बोलकर, सबका नेत्र से अश्रु बह रहा था और अष्ट सात्विक विकार वो जमीन पर लौट रहे थे, ऐसे मैंने देखा, इसीलिए मुझे लगता है कि वो साक्षात भगवान ही है, ऐसा वो वर्णन करने लगे वो सुबह के पास जो शराबी थे। तो ऐसा वर्णन जब वो सुन रहे थे तो कुछ बोले नहीं, वो सुनते जा रहे और वो कहते जा रहे, दोनों मुसलमान हैं, एक सुबह है और एक इनका गुप्तचर है। तो ऐसा वर्णन सुनते सुनते वहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब उसने सुना उस सुबह ने भगवान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन और वो जो गुप्तचर कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे भगवान का नाम का श्रवण जब किए, तब उनका मन फिरने लगा, कुछ सात्विक विचार आने लगे, सात्विक विचार आने लगे और उसका मन परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन होने के साथ साथ वो कहने लगे उस गुप्तचर से कि मुझे मिलना है उस महापुरुष से, तुम बंदोबस्त करो कि मुझे उससे मिलना है, अगर वो मुझे अनुमति देगा, अनुमति देते हैं उस साधु, तो मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तब गुप्तचर ने दूसरा उसका साथी बोला है सैनिक को और गए महापात्र के पास जो चैतन्य महाप्रभु का यात्रा का पूरा निरीक्षण कर रहे थे उनके पास, और उसे कहा कि हमारा जो सुबह है वो महाप्रभु से मिलना चाहता है। अगर आप अनुमति दे, आप पूछ लो महाप्रभु से, अगर वो अनुमति देता है तो हमें मिलना है। तो महापात्र ने महाप्रभु से पूछा, यदि देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को भी मिलने से मना किए थे, लेकिन यहाँ उन पर कृपा करने के लिए महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं। ठीक है, अगर उनको मिलना है तो बुला लो। तब उस महापात्र ने कहा, आपका बादशाह जो सुबह है वो आ सकता है, उनके साथ पाँच दस व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन बिना शस्त्र के साथ आइए, शस्त्र साथ नहीं। उनके साथ वो लोग आ सकते हैं, 10-12 लोग आ सकते हैं, लेकिन बिना शस्त्र आइए। तो गए गुप्तचर और सुबह से कहा, तो सुबह आए वहाँ महाप्रभु से मिलने, और आकर वैष्णव वेश बनाकर आए। यद्यपि था वो मुसलमान, सुबह शराबी पीने वाला, वो प्रख्यात थे उस प्रांत में शराब के कारण, लेकिन वो महाप्रभु से मिलने के लिए आए। उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, भगवान का नाम और उनका रूप और गुण सुनकर। और सुनाने वाला कौन था? वो भी कोई भक्त नहीं था, वो भी ऐसे ही शराबी मुसलमान, लेकिन महाप्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करने के कारण, उनका मुख से नाम कीर्तन सुनने के कारण उनका भी परिवर्तन हो गया। और जब उसने सुनाया उस सुबह को, तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो यह महाप्रभु की कृपा। वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें या कुछ में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि उनकी पार्षदिक कृपा ऐसी है कि हम जो विदेश में, जो यहाँ अमेरिका में जो 4 पाप करने वाले लोग हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन महाप्रभु की कृपा से होता है, उनके पार्षदों की कृपा से होता है। तो सुनाने वाला भी कोई भक्त नहीं था, फिर भी महाप्रभु की लीला रूप गुण सुनाए और सुबह का भी परिवर्तन हो गया, और वैष्णव वेश बनाकर महाप्रभु को मिलने के लिए चला। और जैसे महाप्रभु को दर्शन करते हैं, देखते हैं, तुरंत उनके चरणों में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उनको भी अष्ट सात्विक विकार होने लगता है। उस सुबह को जो शराबी थे, कोई जप वप नहीं किए थे पहले, खाली नाम कीर्तन सुना था भगवान का, वो भी किसी भक्त के मुख से भी नहीं, और कहने लगे चैतन्य महाप्रभु के शरणों में प्रार्थना करने की, मुझे विधि ने, ब्रह्मा जी ने मुझे मुसलमान के कुल में जन्म क्यों दिया? अगर मुझे हिंदू के कुल में जन्म दिया होता तो मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ चलता था। मुझे ब्रह्मा जी ने, विधि ने ये मुसलमान कुल में जन्म क्यों दिया? इसी तरह वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगते हैं। तो इसी तरह ये सुंदर प्रसंग वहाँ दिया है कि जिस तरह भगवान गौरांग महाप्रभु का कोई कीर्तन सुनता है, उनके बारे में कोई सुनता है, उनका रूप के बारे में सुनता है, उनके गुण के बारे में सुनता है, तो वैसा व्यक्ति कितना भी और कैसा भी क्यों ना हो, उनका हृदय अवश्य परिवर्तन होता है। और प्राय हम देखे कहीं कहीं संप्रदाय कहीं कहीं प्रयास किए हैं, लेकिन जो श्री प्रभुपाद ने किया महाप्रभु की रूपा से, वो आज तक किसे कोई नहीं कर पाए। जो सांडाल के भी अधम थे, ऐसे लोगों को भी महान आचार्य पद पर स्थापित कर दिए ये महाप्रभु की कृपा के कारण। और प्रभुपाद ने महाप्रभु के बातों पर इतना विश्वास था, उस विश्वास के साथ महाप्रभुपाद ने कीर्तन ही सुनाया सर्वप्रथम। कीर्तन के कारण से भी जो यवन से भी निम्न थे, ऐसे लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के कारण प्रभुपाद को इतना विश्वास था, उस फिर बाद में भक्त बन गया। तब फिर बाद में प्रभुपाद के साथ जब यात्रा करते थे, तो एक बार प्रभुपाद के साथ वो लोग यात्रा सुबह सुबह परिभ्रमण करते करते जा रहे थे, तो जा रहे थे तब समुद्र किनारे पर, तो प्रभुपाद के कई शिष्यों के साथ प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते थे, तो उनके साथ एक शिष्य था नंदगोप करके, नंदगोप प्रभु करके, तो वो थोड़ा पीछे रह गए। और प्रभुपाद तो देखते हैं कि प्रभुपाद हमेशा फास्ट चलते हैं, स्लो नहीं चलते, फास्ट ही चलते। तो वो थोड़ा पीछे रह गया, तो पीछे रह गया तो उनके पीछे एक कुत्ता आया भौंकते हुए, और उस नंदगोप प्रभु वो डर गए, तो डर गए जहाँ प्रभुपाद जा रहे थे, दौड़ दौड़ कर वहाँ, और कुत्ता जैसे वो प्रभु नंदगोप प्रभु भागे तो कुत्ता भी उनके पीछे भागा। कुछ प्रयास किया होगा हटाने के लिए, कुत्ता हटा नहीं वहाँ से उनके पीछे से। तो प्रभुपाद जहाँ थे वहाँ आ गए, तो कुत्ता भौंक रहा था, तो प्रभुपाद ने छड़ी हाथ में थी, प्रभुपाद के हाथ में, तो छड़ी उठाया और हट कहा तो कुत्ता वहाँ से भाग गया। तो सब शिष्य सब आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद का तो वर्चस्व तो पशुओं पर चलता है, ये कुत्ते भी वहाँ से भाग गए जो पीछे पड़ा था। तो इस घटना को फिर वहाँ भूल गए। तो वही नंदगोप प्रभु और प्रभुपाद जब भारत में सब शिष्यों के साथ आए तो जयपुर गए थे, जयपुर पंडाल प्रोग्राम बड़ा था, तो उस पंडाल प्रोग्राम में प्रभुपाद और उनके शिष्य सब गए थे। तो ये नंदगोप प्रभु प्रभुपाद के लिए प्रसाद बना रहे थे किचन में, तो किचन में प्रसाद बना रहे थे, तो रोटी बना रहे थे वो नंदगोप प्रभु, तो रोटी बना रहे थे। वहाँ बंदर आया किचन में, बारी के पास बंदर आकर खड़ा रह गया। तो बंदर आया तो वो तो घबरा गए, अभी क्या किया जाए। तो उसको वो घटना याद आ गई प्रभुपाद की, कि प्रभुपाद ने छड़ी उठाया था और कहा था हट, तो कुत्ता चला गया था, तो उनके हाथ में बेलन था, तो बेलन उठाकर बंदर को कहा हट, तो वो तो बंदर वो वहाँ बर्तन पड़ा था, उठाया बंदर ने बर्तन और उनके सर पर फेंका, अनंत को प्रभु के सर पर। तो सर खिसला, कुछ प्रभुपाद के पास गए और कहने लगे प्रभुपाद मैंने तो आपका ही फॉर्मूला उपयोग किया था, लेकिन कुत्ता तो भाग गया थे, बंदर ने मेरे पर बर्तन मारा। तो प्रभुपाद ने कहा वहाँ कि तुम जो किया ना वो विचार करके नहीं किया और समझ कर नहीं किया, हमेशा चाहिए भक्त को चाहिए कुछ सोचे फिर बाद में समझे उस प्रसंग को, समझने के बाद उसको कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो कुत्ता था या बंदर था, बंदर का और कुत्ता का स्वभाव अलग अलग होता है, तो दोनों का एक कार्य से काम नहीं होगा। तो इसी तरह प्रभुपाद कहीं शिक्षाएं दी इसी प्रकार अपने भक्तों को। तो कहने का तात्पर्य कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई व्यक्ति स्मरण कर सकता है नाम कीर्तन के कारण, लेकिन अहंकार जो ये प्रलंबासुर किसी के हृदय में आ गया, अहंकार आ गया, तो वो स्मरण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से उनको नम्रता और अहंकार से मुक्त हो सकता है, वरना अपने आप कोई इस भक्ति मार्ग में से जो प्रगति करना चाहिए वो नहीं कर पाए। देखा जाए तो सुबह दारू पीने वाला था, लेकिन वो अष्ट सात्विक विकार पा गए कुछ ही क्षण में। लेकिन हम लोग विशेष करके मैं कई सालों से जप करते आ रहे हैं, कुछ नहीं अनुभव ना कुछ, तो ये हमारी कमी है, गुरु को आज्ञा का पालन नहीं करते ठीक तरह से, अहंकार बढ़ता है। तो श्री बलराम जी के शरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें यह अहंकार से मुक्त कराएं और गुरु के शरणों में। तो विशेष करके आज के जो श्लोक में है अविषय मानव, जब भगवान को जीत पाना बहुत कठिन है ऐसा सोचकर परमासुर श्री बलराम जी को उठाए और उठाकर अपने कंधों पर भागे, जहाँ स्थान निश्चित किया था उस स्थान क्रॉस कर गए। वो क्रॉस करके आगे हम अगले श्लोक में सुनेंगे कि बलराम जी ने किस तरह उनका वध किया। तो ये अजित जो भगवान को जो जीत नहीं पाते हैं ऐसा समझकर वो प्रणवासुर बलराम जी को उठाए। तो मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो वनमाल प्रभु से पूछिए। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की।